living.
Medical Wing of Brahma Kumaris presents Empowering Medical Minds.
Om Shanti. Allopathy, Ayurveda, Homeopathy, Naturopathy और ऐसी कई ऐसे भिन्न भिन्न तरीकों से विधियों से हमेशा ही समाज के मन और शरीर को स्वस्थ रखने की सेवा की है। हमेशा ही अपने बारे में न सोचकर औरों की सेवा करने में लगे रहे हैं। न दिन देखा न रात, न परिवार के बारे में सोचा और कभी कभी तो ना तो अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचा। सेवा सेवा और सेवा अथक होकर सेवा करते रहे हैं, हमेशा ही कर रहे थे, लेकिन इस समय तो हमेशा से कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। दूसरों को स्वास्थ्य देने में बाहर की परिस्थितियां कभी भी अनुकूल नहीं थी, क्योंकि आपके सामने जो भी आता वो मन से भी परेशान होता है और तन से भी बीमार तो है, इसीलिए आपके पास आया है। तो बहुत कम ऐसा होता है कि लोग बड़े खुश खुश आपके पास आते हैं। मन और शरीर से कोई ना कोई रोग लेकर ही आपके पास आते हैं और इसीलिए हमेशा ही आपके चारों तरफ की जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव ज्यादातर नहीं होती है, क्योंकि आपके चारों तरफ हर रोज दिन रात दर्द दुख बीमारी ये वाइब्रेशंस हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जब आप उनकी सेवा करते हैं और उनका शरीर ठीक हो जाता है, उनका मन सुखी हो जाता है, तो फिर वो ऊर्जा बदल जाती है और आप उनको स्वस्थ करके मन को सुकून देकर फिर जब वो सेवा पूरी होती है तो वो कितना दिल से आपको दुआएं देते हैं। तो दर्द में आते हैं, ठीक होकर जाते हैं, दुखी आते हैं, सुखी होकर जाते हैं। ये कितनी बड़ी सेवा है जो आप कितने सालों से कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां हमेशा ही थोड़ी सी मुश्किल तो होती ही है और कभी कभी तो चैलेंजेस बड़े भी होते हैं, लेकिन इस समय जैसा तो शायद कभी भी नहीं हुआ था। अपने जीवन काल में तो नहीं देखा हमने कि सिर्फ एक शहर प्रांत देश में नहीं, लेकिन सारे विश्व में परिस्थिति, और वो परिस्थिति जो काफी समय से है और शायद कुछ समय और भी रहेगी। और इसमें आप सबकी भूमिका सबसे अहम चल रही है, सबसे अहम, क्योंकि आपको उनको भी संभालना है जो कोरोना वायरस या कोविड की बीमारी से आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आप सबको उनको भी संभालना है जो दूसरी बीमारियों से आ रहे हैं, लेकिन अब अपनी बीमारी की चिंता और डर के साथ साथ उनको वातावरण की बातों से भी डर और चिंता लग रहा है। तो इस समय आपका रोल, आपकी सेवा कई गुना ज्यादा, थोड़ी सी मुश्किल कहें या थोड़ी सी ज्यादा शक्ति जिसमें लगे, एनर्जी लगती है ना, हर एक के मन को समझाना, हर एक के मन को निश्चिंत करना, हर एक को ये विश्वास दिलाना कि आप आओ, आप ठीक हो, डोंट वरी, हम आपका ध्यान रखेंगे, ये सब करने में एक एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी आप उनको ठीक करने में भी लगा रहे हैं, उनके मन को सुकून देने में भी लगा रहे हैं, तो शक्ति की तो थोड़ी ज्यादा आवश्यकता है इस समय। लेकिन कभी कभी औरों का ध्यान रखते रखते अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं, और जब अपना ध्यान नहीं रखते और औरों को शक्ति देते रहते हैं तो आप सोचिए क्या होगा। इट्स लाइक एक बैटरी है जो अपने आप को चार्ज नहीं करती, लेकिन औरों को चार्ज करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, विदाउट चार्जिंग इटसेल्फ। अपने आप को चार्ज करे बिना दूसरों को ऊर्जा देते रहना तो फिर वो कभी ना कभी अपनी बैटरी पर असर करना शुरू हो जाता है। और शायद ऐसा ही समय चल रहा है कि अपनी बैटरी पर थोड़ा सा असर आने लग गया है, अपना मन थोड़ा सा कभी कभी डर में चिंता में थक भी जाते हैं ना, शारीरिक रूप से भी तो हम थक जाते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से भी ज्यादा मन से भी इस समय थके हुए हैं। बाकी आसपास की और बातें भी चल रही हैं, नियम कानून रोज बदल रहे हैं, क्योंकि इनसिक्योरिटी भी है और अनसर्टिनिटी भी है, पता ही नहीं है कि कौन सा मेथड वर्क करेगा कौन सा नहीं वर्क करेगा, तो एक समय पर इतनी सारी बातें इकट्ठे आना और सब पर आना और इतने लंबे पीरियड पर आना शायद पहली बार ही हो रहा है। और इसलिए इस समय सबका ध्यान रखते हुए, सबकी सेवा करते हुए, सर्वप्रथम अपना नाम ऊपर तो लिखना ही पड़ेगा। जब आप लिस्ट बनाते हैं कि आपको कितनों का ध्यान रखना है, कितनों की सेवा करनी है, उसमें सबसे पहले ऊपर अपना नाम तो अब आना ही पड़ेगा। अब ये बात सोचते ही ऐसा लगता है अपने लिए कहाँ टाइम है, अब तो अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन अब तो अपने लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये बैटरी अपने आप को चार्ज नहीं करेगी, जब तक हम अपने शरीर को ठीक नहीं रखेंगे, तब हम अपनी वो सेवा संपूर्ण रीति सही स्थिति में और सही वाइब्रेशंस दूसरों को देते हुए कैसे कर पाएंगे। तो एक चीज तो आज पक्की करते हैं, कैसे करना है वो देखेंगे, लेकिन एक चीज तो आज पक्की करनी पड़ेगी कि सेवा की लिस्ट में, जिम्मेवारियों की लिस्ट में मुझे अपना नाम सबसे पहले लिखना ही होगा। सेल्फ केयर बिफोर वी स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ अदर्स, स्व की सेवा, ताकि हम औरों की सेवा बहुत अच्छी रीति कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्व की सेवा तो करनी पड़ेगी। अपना ध्यान रख के जब औरों का ध्यान रखने जाएंगे, तो जो हमारे से वाइब्रेशन उनको मिलती है वो सिर्फ इलाज की नहीं मिलेगी, सुकून की मिलेगी, सुख की मिलेगी, निश्चिंतता की मिलेगी, और हमारे मन की स्थिति उनके मन की स्थिति को शांत कर देगी। और जब उनका मन शांत हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा, तब उनका शरीर जल्दी हील होगा। तो इसलिए पहले भी एक्चुअली ये जरूरी था कि हम अपना ध्यान जरूर रखें, लेकिन इस समय तो जरूरी नहीं है, इस समय तो आवश्यक नेसेसरी हो गया है, इस समय तो कंपल्सरी होना चाहिए, इस समय तो मैंडेटरी होना चाहिए कि ये हमें करना ही है, ये हमें करना ही है। इसमें हम ऑप्शन नहीं दे सकते अपने आप को, इस समय हम ये नहीं कह सकते नहीं नहीं टाइम नहीं है हमारा साथ, नहीं, सारा टाइम उनको देने के लिए ही अपना ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है, हमेशा था, अभी बहुत जरूरी है और आगे भी हमेशा ही रहेगा। टेकिंग केयर ऑफ आर ओन माइंड, हीलिंग द हीलर, हीलर मतलब जो दूसरों को सुख और सुकून और सेहत देता है। ट्रीटमेंट अलग बात होती है और हीलिंग अलग बात होती है। ट्रीटमेंट दवाइयां करती हैं, प्रोसीजर्स करते हैं, आप दवाई लिख लेते हैं, आप उनको प्रोसीजर बताते हैं, उनका प्रोसीजर कर देते हैं और बीमारियां और वो प्रोसीजर और वो सर्जरी उनके शरीर को ठीक करना शुरू करती है, लेकिन आपकी वाइब्रेशन जो उनका इलाज करने वाला है उसकी जो वाइब्रेशन है उसका भी तो रोल है उनकी हीलिंग में। जब किसी की हीलिंग होनी है, विच मीन्स किसी के मन और शरीर को हेल्थ देनी है, तो उसमें किस किस का रोल प्ले करता है देखते हैं थोड़ा सा। अगर सपोज मेरा शरीर बीमार है तो मेरे शरीर को ठीक करने में किस किस का रोल प्ले होगा? सबसे पहली चीज, मेरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप कहेंगे कि मेरा मन भी ठीक होना चाहिए। स्पेशली आयुर्वेदा, होम्योपैथी, एलोपैथी में भी डॉक्टर्स हमेशा हमें कहते हैं आप टेंशन मत लीजिए, आप स्ट्रेस मत लीजिए, आप टेंशन लेंगे ना तो आपका शरीर ज्यादा टाइम लगाएगा ठीक होने के लिए। तो हरेक कहता है कि मन और शरीर का कनेक्शन है। हरेक ने हमें हमेशा बताया है कि मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि शरीर जल्दी ठीक हो तो ये मन से जाने वाली ऊर्जा, क्योंकि हमारी हर सोच, हमारा हर संकल्प हमारे शरीर तक पहुंचता है। एक तरफ से हमें अच्छी दवाइयां मिल रही हैं, सही विधि मिल रही है शरीर के लिए, लेकिन यहां से अगर हम अच्छी एनर्जी नहीं दें तो डॉक्टर्स कहते हैं आप 10 दिन में ठीक हो जाएंगे, लेकिन हमें 12 दिन हो गए, 13 दिन हो गए, हम ठीक नहीं हो रहे हैं। तो फिर हम डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब आपने तो कहा था ना कि 10 दिन में ठीक हो जाएगा, तो हम क्यों नहीं ठीक हो रहे? तो डॉक्टर साहब कहते हैं आप अपने मन को थोड़ा शांत करो, फिर आप जल्दी ठीक हो जाओगे। तो जब हमें आप डॉक्टर्स एक समय बताते हैं कि आप इतने दिन में ठीक हो जाएंगे, तो आपका बताया हुआ समय वो बिल्कुल सही होता है, लेकिन वो समय किस आधार से निश्चित होता है कि मेजोरिटी लोग उतने दिन में ठीक होते हैं। तो वो एक कैलकुलेशन है बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ द मेजोरिटी। तो सेम बीमारी सेम दवाई मेजोरिटी लोगों को उतने दिन में ठीक करती है। तो सपोज मेजोरिटी का फिगर 10 दिन का है, तो आप पेशेंट को कहते हैं आप 10 दिन में ठीक हो जाएंगे इस दवा से। लेकिन अगर वो पेशेंट बहुत ज्यादा चिंता करता है, सारा दिन सोचता रहता है हाय मैं बीमार हूँ, हाय मैं बीमार हूँ, हाय मैं कब ठीक होगा, मैं कब काम पे जाऊंगा, ये कभी ठीक भी होगा कि नहीं होगा, मुझे क्या हो गया है अचानक, हम तो ठीक थे, इतनी बड़ी बड़ी बीमारी कहाँ से आ गई है, कंटिन्यूसली बीमारी बीमारी, बीमार हो दर्द में हो ये सोचते रहते हैं। तो आपकी जो दवा है वो तो शरीर को लगती है, क्योंकि आपने दवा ही शरीर के लिए ही दी है, तो वो दवा शरीर को ठीक करने के लिए होती है। लेकिन एक और चीज का असर जो शरीर पर पड़ रहा है वो हमारे मन की स्थिति है। तो वो पेशेंट की मन की स्थिति अगर ठीक नहीं होती, तो आपने कहा था 10 दिन, लेकिन उसको 12 दिन, 14 दिन, कभी कभी तो उससे भी ज्यादा लग जाता है। और कभी कभी तो ऐसे लोग भी मिलते हैं जो इनको आपने कहा था 10 दिन, लेकिन वो 6-7 दिन में ही ठीक होने लग जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ से बहुत पीसफुल और पावरफुल वाइब्रेशंस अपने शरीर को दे रहे हैं। उनको संपूर्ण विश्वास है परमात्मा में, आप में, खुद में। ये संपूर्ण विश्वास, ये संपूर्ण निश्चय उनके शरीर को बहुत अच्छी ऊर्जा देता है। तो यहाँ से आपकी विधि, आपकी दवाई और यहाँ से उनके मन की स्थिति, जब सब चीज इस शरीर को सही मिलती है तो ये शरीर बहुत जल्दी ठीक होने लग जाता है। तो इसलिए पेशेंट की हेल्थ में उसके मन की स्थिति का तो बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे पहली चीज पेशेंट के मन की स्थिति, दूसरा जो उसके परिवार वाले हैं उनके भी मन की स्थिति, क्योंकि परिवार शरीर का ध्यान तो बहुत अच्छा रखता है पेशेंट के, उनको समय पे दवाई खाना पीना आराम सब कुछ बहुत अच्छे से कराते हैं। लेकिन अगर परिवार चिंता में रहे, बार बार बीमारी के बारे में ही सोचे और बोले, तो उसके वाइब्रेशंस भी उस जो बीमार है उसको पहुंचते हैं। तो परिवार के मन की स्थिति का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब पेशेंट के मन, परिवार का मन। तीसरा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है आपका मन, मतलब वो है डॉक्टर्स, नर्सेस और सारा जो हीलिंग करने वाला स्टाफ है, मतलब सारे लोग जो उस पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, उन सबके मन की स्थिति का असर भी पेशेंट के मन की स्थिति पर पड़ता है और पेशेंट के शरीर पर भी वो वाइब्रेशन का असर पड़ता है। तो इसलिए हीलिंग मतलब हमारे मन की स्थिति का रोल दूसरों को ठीक करने में। तो सिर्फ पेशेंट का मन नहीं, जो डॉक्टर का मन है उसका रोल भी पेशेंट को ठीक करने में बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए मन की स्थिति आपकी हमेशा हाई वाइब्रेशनल होनी चाहिए, हमेशा शक्तिशाली शांत। आपके अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई बात चल रही हो, कोई आपके परिवार में कोई बात आई हो, घर में कोई परिस्थिति है, अगर उस बात को लेकर आप अपने हॉस्पिटल पहुंचते हैं, अपने पेशेंट्स को देखना शुरू करते हैं, तो आप इलाज तो परफेक्ट ही करेंगे, क्योंकि वो तो आपके अंदर फिक्स्ड हो गया है, वो तो आप कभी गलती कर ही नहीं सकते, इलाज परफेक्ट होगा। लेकिन अगर आप यहाँ से परेशान हैं तो उस दिन हीलिंग उतनी अच्छी नहीं होगी, इलाज सही होगा, क्योंकि आपसे जो वाइब्रेशन उनको जाएगी वो चिंता की होगी, दुख की, डर की, दर्द की होगी, जो आपके अपने कोई व्यक्तिगत कारण की वजह से हो सकता है। इसीलिए दूसरों का इलाज करने के लिए हमारे मन की स्थिति का रोल बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि मन में कुछ चल रहा है, यहाँ से हम मुस्कुरा रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं और उनकी नब्ज देख रहे हैं और उनको दवाई लिख कर दे रहे हैं। ये थोड़ी सी हीलिंग में कमी आ जाएगी अगर हम यहां से नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हीलिंग द हीलर अर्थात औरों की हीलिंग करने से पहले हमें अपने मन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और इस समय तो खैर बहुत 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 जरूरी कंपल्सरी ही है। तो कुछ चीजों का ध्यान रखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपने मन की स्थिति को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पर डालते हैं कि मुझे अपने मन की स्थिति का ध्यान रखना है। इमोशनल फिटनेस, एज हेल्थ केयर एम्बेसडर्स हम हमेशा फिजिकल फिटनेस की तो बहुत बात करते हैं, हम मेंटल फिटनेस की भी बात करते हैं क्योंकि मेंटल फिटनेस तो कितनी जरूरी है, लेकिन वो भी हमारे जो साइकाइट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोचिकित्सक हैं, हमें लगता है ये उनकी फील्ड है, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में बात तो करते ही हैं। तो फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, लेकिन एक और चीज जो बहुत जरूरी है वो है इमोशनल फिटनेस। इसके बारे में हमें सोचना और बात करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो लोग आएंगे वो यहाँ के इलाज के लिए आएंगे, लेकिन यहाँ से उनकी मन की स्थिति, मेंटल हेल्थ इश्यू कोई नहीं होगा, उनको कोई डिप्रेशन एंजाइटी अटैक नहीं है, लेकिन उनको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, डर बहुत लगा हुआ है, चिंता बहुत है, पहले से बीमारी के चलते हॉस्पिटल आने का बहुत ज्यादा डर लगा हुआ है। तो इमोशनल फिटनेस इस समय थोड़ी सी डाउन है, और अगर इमोशनल फिटनेस डाउन होगी तो फिजिकल फिटनेस क्रिएट करने में टाइम लगेगा। इसलिए सबसे पहले अपनी इमोशनल फिटनेस को एक प्रायोरिटी बनाते हैं, और अपनी इमोशनल फिटनेस को जब प्रायोरिटी बना लिया और जब उसका परिणाम देखा और जब देखा कि ये करना तो बहुत ईजी है, तो फिर औरों के लिए करना बहुत ईजी हो जाएगा। ये आपकी तरफ से एक बहुत बड़ी गिफ्ट होगी समाज के लिए, बहुत बड़ी सौगात होगी ये कि आप समाज के शरीर और मन की सेवा दोनों इकट्ठे करना शुरू कर देंगे। शरीर की सेवा करने के लिए तो टाइम एनर्जी लगाना पड़ता है, इमोशनल फिटनेस उनको देने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए तो सिर्फ खुद की इमोशनल फिटनेस बढ़ानी है। तो इमोशनल फिटनेस को प्रायोरिटी रखते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इमोशनल फिटनेस है क्या चीज, किसको कहेंगे कि ये इमोशनली फिट है। तो अपने आप को रैंकिंग देते हैं, अभी थोड़े नंबर देते हैं, 1 to 10 पर अपने आप को नंबर दीजिएगा कि 1 मतलब इमोशनल फिटनेस लो और 10 मतलब इमोशनल फिटनेस हाई। अब लो और हाई के बीच में आप अपने आप को 1 से 10 पर कहीं भी नंबर दे दीजिएगा। इमोशनल फिटनेस लो मतलब परिस्थितियां और लोगों का व्यवहार हमारे मन की स्थिति पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। मतलब कुछ भी हमारे अनुसार अगर नहीं हो रहा है, कुछ बातें ठीक नहीं हो रही है, काम समय पर नहीं हो रहा है, लोग मेरे अनुसार व्यवहार नहीं कर रहे हैं, लोग मेरा कहना नहीं मान रहे हैं, तो हम हिल से जाते हैं। पहले मन में हिलते हैं, अच्छा नहीं लग रहा होता उनको देखकर, अच्छी फीलिंग नहीं आती, फिर रोक नहीं पाते अपने आप को तो शब्दों में भी कह देते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बदल जाती है। मतलब आसपास की ऊर्जा, आसपास की वाइब्रेशंस, सिचुएशंस, बिहेवियर्स, एनर्जीज जो हमारे आसपास हैं, उसका प्रभाव हमारे मन की स्थिति पर पड़ना शुरू हो गया। और ये हम सबने देखा है कि कुछ लोग बड़ी छोटी छोटी बातों में भी हिल से जाते हैं, अचल नहीं रह पाते, स्थिर नहीं रह पाते, स्टेबल एंड काम नहीं रह पाते, और फिर जब अंदर से थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं तो उसकी जिम्मेवारी भी नहीं लेते, जिम्मेवारी भी परिस्थिति और लोगों पर डालते हैं। इनफैक्ट कभी कभी तो लोगों को कहते हैं मुझे इतनी टेंशन मत दिया करो, मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। तो मतलब यहाँ की जिम्मेवारी, यहाँ का रिमोट कंट्रोल भी उनको लगता है कि औरों के हाथ में है, और औरों से रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि मुझे चिंता मत दो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। दिस इज इमोशनल फिटनेस एक्सट्रीमली लो, विच मीन्स इम्यूनिटी सिस्टम यहाँ का एक्सट्रीमली लो है। आसपास कोई छोटी सी बात हुई और हमने उसकी इन्फेक्शन को कैच कर लिया तो इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम हमारा बहुत लो है, दैट इज लो इमोशनल फिटनेस। तो परिस्थिति और लोगों के व्यवहार का हमारे ऊपर कितना असर पड़ता है उसके हिसाब से अपने आप को रैंकिंग दीजिएगा। जिसका मन हमेशा ये चाहता है कि सब कुछ मेरे अनुसार हो, तो इमोशनल फिटनेस थोड़ा लो। जिसका मन ज्यादातर एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है सब कुछ तो मेरे अनुसार नहीं हो सकता, चाहे वो आज का मौसम है, चाहे वो सड़क पर ट्रैफिक है, चाहे मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, चाहे परिवार है, चाहे बच्चे, सारे मेरे अनुसार नहीं हो सकते हैं। एक्सेप्टेंस पावर हाई। तो जिसका एक्सेप्टेंस पावर हाई होगा, जो परिस्थिति अनुकूल नहीं होगी लेकिन फिर भी शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, एकाग्र रहेगा, उसका इमोशनल फिटनेस हाई, उसका इमोशनल फिटनेस हाई। और इसमें भी फिर हमारे को वैल्यूज के आधार से दिखाई देता है, जो इमोशनली जल्दी डिस्टर्ब होते हैं, विच मीन्स इमोशनल फिटनेस लो, तो वो जल्दी जल्दी टेंशन क्रिएट करते हैं, स्ट्रेस ज्यादातर रहता है उनके जीवन के अंदर, इरिटेट भी हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में, चिढ़ के खिंच के बात करते हैं, आराम से प्यार से सम्मान से बात नहीं कर पाते हैं तो वो इरिटेट होकर बात करते हैं। लोगों के अंदर गलतियां ज्यादा दिखाई देती है उनको, क्रिटिसिज्म करने की आदत, निंदा करने की आदत, शिकायत करने की आदत, शुक्रिया कम करते हैं जीवन के लिए, शिकायत करने के लिए बहुत सारी बातें मिल जाती हैं, तो शिकायत करने की आदत, जल्दी जल्दी नाराज हो जाना, गुस्सा आ जाना, अपने ऊपर मन और शब्दों पर संयम खो देना, फिर कोई कुछ और कह दे तो फिर बुरा लग जाना, बहुत जल्दी जल्दी हर्ट हो जाते हैं और फिर बात जो हो गई उसको भूल भी नहीं पाते हैं, बहुत लंबा पकड़ के रखते हैं। अभी भी चेक करें तो कई सालों वाली बातें पकड़ के रखी हुई है। इंसल्टेड फील करना कि उन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी, उन्होंने मेरी डिसरिस्पेक्ट कर दी, ऐसा फील करना, क्योंकि चाहते हैं कि लोग बिल्कुल मेरे साथ वैसा व्यवहार करें जो हमें लगता है सही है। लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करना कि सब लोग मेरे अनुसार चलने चाहिए। ईर्ष्या करना, जेलेसी, कंपैरिजन, अपनी तुलना औरों से करना, हमेशा एक वेरी वेरी सटल कंपटीशन में जीवन जीना कि मुझे औरों से आगे होना है। ऐसे कैसे हो गया कि दूसरे को मुझसे ज्यादा मिल गया? दूसरे को जब ज्यादा मिले तो खुश ना होना, इनफैक्ट थोड़ा सा बुरा लगना कि उनको मुझसे ज्यादा कैसे मिल गया। ये बहुत सूक्ष्म, बहुत सटल 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 चेकिंग है। मोटे रूप से चेक करेंगे ना तो इमोशनल फिटनेस मोटे रूप से नहीं दिखाई देता, इसके लिए अपने मन की गहराई में जाकर बहुत सूक्ष्म चेकिंग करनी होती है। तो ऐसी वाली भावनाएं आना तो विच मीन्स इमोशनल फिटनेस इज अ लिटिल लो। अब इमोशनल फिटनेस हाई, सबसे पहले शुक्राना वाला जीवन जीते हैं, तो जीवन की हर सीन हर व्यक्ति के लिए शुक्रिया करते हैं, परमात्मा को शुक्रिया करते हैं, जीवन को शुक्रिया करते हैं। उनको एक निश्चय होता है कि जो भी मेरे साथ जीवन में हो रहा है इसमें एक कल्याण समाया हुआ है, इसमें मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा है ही। अगर बाहर कुछ भी अच्छा नहीं तो ये जरूर अच्छा है कि ये मेरी शक्तियों को इमर्ज कर रहा है। तो शुक्रिया का वाइब्रेशन एक बहुत हाई वाइब्रेशन है, ये इमोशनल फिटनेस है। हर परिस्थिति में अलग अलग लोगों के व्यवहार के साथ इमोशनली फिट व्यक्ति स्थिर रहता है, एकदम संयम में रहता है। उसकी सोच, उसके शब्द अपनी चॉइस के होते हैं। वो कभी ये नहीं कहता इनकी वजह से मुझे टेंशन हो गई, इनकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया। ये शब्द इमोशनल फिटनेस वाले व्यक्ति को नहीं आते हैं। वो कहेगा ये मैंने क्रिएट किया, ये मैं जल्दी से ठीक कर लूंगा। तो अगर वो अंदर थोड़ा सा डिस्टर्ब होते भी हैं तो इमिजिएटली अपने आप को ठीक कर लेते हैं और धीरे धीरे डिस्टर्ब होते ही नहीं ऐसी स्थिति पर पहुंच जाते हैं। तो एकरस, एकाग्र, स्थिर, लोगों की अप्रिसिएशन करते हैं, चाहे किसी ने कोई गलती भी की हो उसको शिक्षा देते हैं, लेकिन पहले उसको उसकी अच्छाई का वर्णन करते हैं, उसको उसकी विशेषताएं बताते हैं और फिर उसको प्यार से और सम्मान से शिक्षा भी दे देते हैं। डिसिप्लिन करते हैं लेकिन रिस्पेक्ट के साथ डिसिप्लिन करते हैं। वो किसी के साथ रेस में नहीं होते, ये एक बहुत बढ़िया बात है इमोशनल फिटनेस, क्योंकि यहां से जो भरपूर होगा, इमोशनल फिटनेस मतलब ये बैटरी चार्ज्ड, तो जो यहां से भरपूर होगा उसको दुनिया के साथ रेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अपनी खुशी के लिए बाहर किसी भी चीज पर निर्भर नहीं है, वो संतुष्ट है, खुश है, और अब रोज वो काम करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन इसके लिए वो किसी के साथ रेस में नहीं होते। सो इमोशनल फिटनेस का एक बहुत बड़ा साइन है कि कंपैरिजन, कंपटीशन, जेलेसी, अपनी तुलना दूसरों से करना, ये संस्कार नहीं होगा। स्वमान में जीते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, दुनिया उनके बारे में क्या बोलती है वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है, क्योंकि वो खुद को पहचानते हैं और खुद पर काम करने के लिए रेडी हैं, लेकिन हरेक के ओपिनियन से उनके मन की स्थिति कभी इधर कभी इधर ऐसे नहीं होती है। तो स्वमान में स्थित है, सेल्फ रिस्पेक्ट में स्थित है, नम्रता है, ह्यूमिलिटी है, ह्यूमिलिटी का ऑपोजिट ईगो। तो इमोशनल फिटनेस जितनी लो मतलब ईगो हाई, इमोशनल फिटनेस जितनी हाई उतनी ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी हाई। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 मेरी इमोशनल फिटनेस कहाँ है, क्योंकि वर्तमान समय हरेक को, पूरे समाज को ही अपना इम्यूनिटी सिस्टम तो बढ़ाना है, लेकिन सिर्फ फिजिकल इम्यूनिटी सिस्टम नहीं, अपना इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम भी हरेक को बढ़ाना ही है, और इसलिए यहाँ की फिटनेस का ध्यान हमें जरूर रखना है। तो ये सारे संस्कारों को चेक करिएगा और धीरे धीरे इस पर वर्क करना शुरू करते हैं। जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होंगे उनकी एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं, वो काम करते हैं, करवाते हैं, लेकिन लोगों के संस्कारों को एक्सेप्ट करते हुए काम करते और करवाते हैं। एक्सपेक्टेशंस और सोल पावर का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जितनी ये बैटरी ज्यादा चार्ज्ड होती है, चार्ज्ड है फुल्ली, उसकी एक्सपेक्टेशंस कम, लेकिन जितनी ये बैटरी डिस्चार्ज्ड है उतना ये एक्सपेक्ट करती है सब लोग मेरे अनुसार काम करें, मेरी तरह काम करें, जितनी जल्दी मुझे चाहिए उतनी जल्दी करें, और जो मुझे उनसे चाहिए वो पूरा करें। तो एक्सपेक्टेशंस और इमोशनल फिटनेस बड़ा डायरेक्ट कनेक्शन है। तो जैसे आपके पास बहुत सारे टेस्ट होते हैं, स्कैन होते हैं, आप चेक कर लेते हैं कि सबकी फिजिकल फिटनेस का क्या हाल चाल है, थोड़ा सा कोई किसी चीज में हिलता है शरीर में तो आप उसका स्कैन करा के या उसका ब्लड टेस्ट करा के उसको तुरंत बता देते हैं एक दिन के अंदर कि ये आपको ठीक करना है। इसी तरह अपना स्कैन करना जरूरी है, अपना स्कैन रोज सुबह करना है कि मेरे संस्कार कैसे हैं, कैसे हैं मेरे संस्कार, और कौन सा संस्कार है इसमें से जो मुझे बदलना है। एंड डे बाय डे ये चेकिंग और गुहे होती जाएगी, क्योंकि ये फिजिकल चेकिंग नहीं है ना, तो कोई और तो करेगा नहीं, और एक्चुअली तो कोई और अगर हमारी चेकिंग करता है तो इमोशनल फिटनेस अगर लो हो तो वो भी बुरा लग जाता है। अगर कोई हमें कहे नहीं ऐसे नहीं, आपको ऐसा करना चाहिए या आपकी आदत अच्छी नहीं है, तो मेजोरिटी को ये बात अच्छी तो नहीं लगती। तो चेकिंग तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी। तो रोज सुबह अपने संस्कारों को चेक जरूर करना चाहिए, और इसलिए हीलर मतलब अपनी हीलिंग के लिए अपने संस्कारों की हीलिंग करनी है। हम हैं क्या यहाँ पर, हम संस्कार हैं। इस शक्ति को, ये शक्ति जो शरीर को चलाती है, इस शक्ति को स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आत्मा कहते हैं। बाकी लैंग्वेज तो कोई भी हो, उसको कोई आत्मा कहे, कोई सोल कहे, स्पिरिट कहे, कोई लाइट कहे, कोई एनर्जी कहे, कोई पावर कहे, शक्ति कहे, कॉन्शियसनेस कहे, ये तो सिर्फ शब्द है। इम्पोर्टेंट है रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि ये मेरा शरीर है, और यहाँ जो शक्ति है वो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है। इसीलिए जब किसी को हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए लेके जाते हैं तो डॉक्टर जब अंदर लेके जा रहे हैं तो कहते हैं मिस्टर सो एंड सो को, सिस्टर अंदर लेकर जाओ, तो वो डायरेक्शन देते हैं सिस्टर मिस्टर सो एंड सो को अंदर लेके जा। सपोज वो सर्जरी नहीं ठीक हुई और वो नहीं रहे। उसके बाद डॉक्टर कहते हैं, सिस्टर बॉडी को बाहर लेके जाओ। अंदर तो मिस्टर सोएन सो गए थे, लेकिन बाहर बॉडी को बोलते हैं, बाहर नहीं बोलते कि मिस्टर सोएनसो को बाहर लेकर जाओ, अगर वो नहीं रहे तो वो क्यों? क्योंकि वो नहीं रहे। कौन नहीं रहे? वो जो ऊर्जा, वो जो एनर्जी, वो जो आय, वो अगर नहीं रहे इस शरीर में वो नहीं रहे तो वो शरीर छोड़ दिया उन्होंने, तो फिर डॉक्टर कहेंगे सिस्टर बॉडी को बाहर लेकर जाओ। तो ये हमारी वोकैबुलरी है, लेकिन इस वोकैबुलरी को हमने कभी गहराई से सोचा ही नहीं कि क्या चला गया जो हमने कहा बॉडी को लेकर जाओ। फिर बाहर आके हमने फैमिली को क्या कहा, आई एम सॉरी आपके ये सदस्य नहीं रहे, मतलब वो चले गए, वो इस शरीर में अब नहीं है। तो वो जो शक्ति है उसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आत्मा या सोल कहते हैं। तो वो शक्ति तीन चीजें करती है। एक, वो सोचने का काम करती है तो हम उसको मन कहते हैं। फिर वो निर्णय लेने का काम करती है तो हम उसको इंटेलेक्ट कहते हैं। सो माइंड इंटेलेक्ट, मन बुद्धि। फिर जो निर्णय हम लेते हैं वो हम कर्म में लेकर आते हैं, तो हमने सोचा, फिर निर्णय लिया, फिर उसको कर्म में लाया। और कोई भी बात जब हम बार बार कर्म में लाते हैं तो वो हमारी आदत, हमारा संस्कार बन जाता है। तो ये जो शक्ति है आत्मा, ये तीन काम कर रही है, माइंड विच थिंक्स, इंटेलेक्ट विच डिसाइड्स, एंड संस्कार विच गेट्स क्रिएटेड बाय रिपीटेड कर्मा। तो ये कोई अलग अलग शक्तियां नहीं है, शक्ति तो एक ही है, बट रोल अलग अलग प्ले कर रहे हैं, मन बुद्धि और संस्कार। और इसीलिए इमोशनल फिटनेस मतलब मन हमेशा सही सोचे, परिस्थिति सही नहीं होगी हमेशा, लेकिन मन सही सोचे। लोगों का व्यवहार हमारे साथ सही नहीं होगा हमेशा, लेकिन मेरा मन सही सोचे, इमोशनल फिटनेस। दूसरा, निर्णय एक्यूरेट ले, औरों से ना पूछे, औरों पे डिपेंडेंट ना हो अपने डिसीशंस लेने के लिए। निर्णय एक्यूरेट ले, कम समय में ले, और अपने निर्णय की जिम्मेवारी उठाए और किसी और को ब्लेम ना करें। सो निर्णय एक्यूरेट। सो मन फिट मतलब राइट थिंकिंग, इंटेलेक्ट फिट मतलब डिसीशन एक्यूरेट, एंड तीसरा संस्कार। संस्कार श्रेष्ठ होने चाहिए। तो हर आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार्स हैं वो है प्योरिटी, पीस, पावर, लव, नॉलेज, हैप्पीनेस एंड ब्लिस। इसीलिए उसको सतोगुणी आत्मा कहते हैं। सतोगुणी आत्मा मतलब ये सात गुण, ये सात संस्कार हर आत्मा के हैं। प्यार, शक्ति, शांति, पवित्रता, ज्ञान, सुख, आनंद, सतोगुणी आत्मा, ये सात संस्कार। बाकी जो आजकल हमारी आदतें बन गई हैं, टेंशन, चिंता, दर्द, ये आत्मा के ओरिजिनल संस्कार नहीं है, ये तो ऊपर से लगे हुए दाग है। तो इमोशनल फिटनेस हीलिंग मतलब वो दाग हटते जाएंगे और आत्मा के ओरिजिनल संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। तो सुबह का कुछ समय निकाल कर हमें अपने संस्कारों की चेकिंग और अपने संस्कारों को चेंज करने की विधि के लिए रखना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम यहाँ हैं वो हमारी एनर्जी फील्ड बनेगी, वो हमारी ऑरा बनेगी, और हमारी एनर्जी फील्ड हीलिंग करती है। एज अ डॉक्टर हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन में भी सिर्फ जो हम बोलते हैं, जो हम व्यवहार करते हैं, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, सिर्फ वो नहीं, कम्युनिकेशन मतलब हमारी वाइब्रेशन। जब आप अपने पेशेंट से मिलते हैं, आपके बोल सेकेंड होता है, आपका व्यवहार थर्ड होता है, आपकी फर्स्ट लेयर ऑफ कम्युनिकेशन होती है आपका वो ऑरा, वो एनर्जी फील्ड। और वो ऑरा किस आधार से बनता है? संस्कार, सोच, मेमोरीज, भाव, भावनाएं, सब कुछ जो यहाँ है वो आपका ऑरा बनाते हैं। और इसीलिए जब हम देवी देवताओं के चित्र देखते हैं, जब हम धर्म स्थापकों के चित्र देखते हैं, तो देखिएगा चित्र आज जरूर अपने घर पे, हर चित्र में उनके पीछे एक व्हाइट कलर का ऑरा दिखाते हैं, सफेद एनर्जी फील्ड। तो वो व्हाइट मतलब इमोशनल फिटनेस 10 ऑलवेज, स्पिरिचुअल फिटनेस 10 ऑलवेज, मतलब ये जो बैटरी है ये बिल्कुल चार्ज्ड। और इसीलिए उनको देवी देवता कहते हैं। देवी देवता मतलब जो देने वाले हैं। तो वो सिर्फ धन नहीं दे रहे, विद्या नहीं दे रहे, वो वाइब्रेशन दे रहे हैं, वो दुआएं दे रहे हैं, उसको दाता कहते हैं, देवी देवता कहते हैं। और जो देवी देवता दे रहे हैं तो जिनको वो मिल रहा है उनकी हीलिंग होती है। तो हीलर भी, आप सब भी, डॉक्टर्स भी, नर्सेस भी, सारा दिन सबको दे रहे हैं। तो आपका ऑरा कैसा होना चाहिए, आपकी इमोशनल फिटनेस कैसी होनी चाहिए, ताकि हर एक जो आपसे मिले वो एक मिनट, दो मिनट या कहें 5 मिनट के लिए आपके कैबिन में, आपकी ओपीडी में आता है, बैठता है। कितना टाइम मिलता है आजकल हर एक को मिलने के लिए भी, तो वो 5 मिनट में भी उसको आपसे ऐसी ऊर्जा मिले कि उसकी वाइब्रेशन चेंज हो जाए, तो वो दाता। इसके लिए आपका ऑरा भी वाइट की तरफ होना चाहिए। और वाइट की तरफ ऑरा करने के लिए हमें ये बाकी सारे दाग तो मिटाने ही पड़ेंगे, और अपने ओरिजिनल संस्कार, प्योरिटी, पीस, पावर, नॉलेज, लव, विजडम, हैप्पीनेस एंड ब्लिस, इन ओरिजिनल संस्कारों को इमर्ज करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहली चीज, सारा दिन एक छोटा सा अभ्यास करना कि कुछ भी यहाँ हो, मतलब कोई दाग आ भी जाए, फॉर एग्जाम्पल किसी आ बात से आप इरिटेट हो भी जाए, आपको गुस्सा आ भी जाए, आपको कोई बात बुरी लग भी जाए, हो जाए भी, लेकिन फर्स्ट स्टेप दाग मिटाने का, मतलब संस्कार परिवर्तन का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है जिम्मेवारी लेना, ये मैंने किया। ये नहीं कहना उन्होंने गुस्सा दिलाया, उन्होंने टेंशन दी, उन्होंने मुझे हर्ट किया, उन्होंने, वो इरिटेटिंग है। कई डॉक्टर्स कहते हैं वो पेशेंट बड़ा इरिटेटिंग है, वो इरिटेटिंग नहीं है, वो तो उसका स्वभाव संस्कार है, लेकिन उसके स्वभाव संस्कार से हम इरिटेशन क्रिएट करते हैं, ये थोड़ी सी भाषा को बदल लेते हैं। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आज से शुरू करते हैं, ये बहुत जरूरी है, और आजकल के समय में तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके पास तो सुबह से रात तक बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपके अनुसार नहीं है। सिर्फ अपनी एनर्जी को कंजर्व करना है, अपनी ऊर्जा को ऐसे वेस्ट नहीं कर देना है, वो एनर्जी यहाँ हमें कंजर्व करनी है और एनर्जी फिर हमें बढ़ानी है। इसलिए छोटा सा अभ्यास, एक तो ध्यान रखना है, उलझना नहीं, रिएक्ट नहीं करना, चिढ़ के नहीं बोलना, जोर से नहीं बोलना, इरिटेट होकर नहीं बात करना, गुस्सा नहीं करना। अब ये अगर हम पहले भी कर रहे थे तो अभी नहीं करना, जीवन बदला हुआ है ना अभी। सब लोग कह रहे हैं व्हाट इज द न्यू नॉर्मल, द न्यू नॉर्मल इज इमोशनल फिटनेस, द न्यू नॉर्मल इज कंजर्विंग एनर्जी। हमें अपनी एनर्जी को बचाना है, क्योंकि हमारी एनर्जी अपने लिए और हमारी एनर्जी औरों की सेवा के लिए। तो सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना, तो आधी चीजें तो वहीं पहले दिन से ही खत्म हो जाएंगी, कि मुझे जोर से नहीं बोलना, गुस्से से नहीं बोलना, नाराज होकर नहीं बोलना, इरिटेट होकर नहीं बोलना, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, प्रेशर नहीं डालना, करो लेकिन प्रेशर डाल के नहीं करवाना, क्योंकि ये सारी बातें मेरी भी ऊर्जा को घटा रही है और जो मेरे साथ सेवा कर रहे हैं उनकी भी ऊर्जा को घटा रही है। और इस समय मुझे अपना और उनका, सबकी एनर्जी का ध्यान रखना है, ताकि हम सब मिलकर फिर आने वाले सबकी एनर्जी का ध्यान रख सकेंगे। तो आधी चीजें तो सिर्फ एक डिसीजन लेने से ही खत्म हो जाती हैं। जैसे पहले कुछ लोग स्मोक किया करते थे, लेकिन फिर हर जगह लग गया नो स्मोकिंग जोन, तो वैसे तो उनको इतनी आदत थी करने की कि वो इधर उधर मार्केट गए, एयरपोर्ट खड़े हुए, स्टेशन पे कर ही लेते थे, लेकिन फिर हर जगह लग गया कि नो स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। तो अब वही लोग है ना, लोग थोड़ी बदल गए हैं, लोग नहीं बदले, उनकी आदतें भी वही हैं, लेकिन अब वो हर जगह नहीं कर सकते हैं, तो वो बड़ा ध्यान रखते हैं कि यहाँ करना अलाउड नहीं है। ये माइंड आज्ञाकारी है, ये हमारी हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। तो जैसे ही उन्होंने सब अपने मन को बता दिया कि अब यहाँ करना अलाउड नहीं है, ऑफिस में अलाउड नहीं है, एयरपोर्ट पे अलाउड नहीं है, मार्केट में अलाउड नहीं है, जब इस मन को पता चला वही लोग हैं, वही उनकी आदत है, लेकिन वो कहीं भी पब्लिक प्लेस में नहीं करते हैं, एक डिसीशन अंडरस्टूड एंड फिटेड हियर फॉरएवर, आदत बदल गई। इसी तरह हमें भी अपने आप को कहना है कि अब कुछ महीनों के लिए अपनी शक्ति को कंजर्व करना है, तो गुस्सा करना अलाउड नहीं है, इरिटेट होके बात करना अलाउड नहीं है, प्रेशर क्रिएट करना औरों को जल्दी करो ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया ऐसे बात करना अलाउड नहीं है। जैसे आपने अपने मन को एक दो दिन ये समझा दिया, ये मन हमारा है, हमारा हर कहना मानता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सही और गलत बहुत अच्छे तरह से अपना समझता है, और अपना ध्यान रखना तो इसको पता है, सिर्फ हमें इंस्ट्रक्शन इसको सही देनी है। पहले हमने इसको इंस्ट्रक्शन क्या दी थी, उन्होंने किया ऐसे तो गुस्सा तो आएगा, तो मन ने मान लिया, और जब जब किसी ने कुछ ऐसा किया मन ने बड़ा प्यार से गुस्सा किया, मतलब वो वाला संस्कार एक्टिवेट हो गया, क्योंकि मन ने सोचा कि गुस्सा तो करना ही पड़ेगा, बात ऐसी है, निर्णय लिया, कर्म में आ गए, संस्कार बन गया। अब हम मन को कहेंगे नहीं, अब हमें अपने इम्यूनिटी सिस्टम का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने भी और अपने लोगों के भी, तो इसलिए आज से गुस्सा नहीं अलाउड, इरिटेट नहीं अलाउड, किसी के साथ आर्ग्यू करना, अब कोई आर्ग्यू ही करता जा रहा है, जिद कर रहा है, अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ उलझना नहीं, अपनी बात कह दो एक बार और फिर वहां से थोड़ा सा, अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इतनी एनर्जी अब हम वेस्ट करेंगे नहीं। समय बदला हुआ है, समय के साथ बदलना होगा, अगर समय से पहले नहीं बदले थे कम से कम समय के साथ तो बदलना पड़ेगा ना, अगर समय के साथ भी नहीं बदले तो फिर हम अपने मन का ध्यान कैसे रखेंगे। सो ईदर वी शुड हैव चेंज्ड बिफोर टाइम और वी नीड टू चेंज विद टाइम, बट इफ समवन डजंट अग्री टू चेंज विद टाइम देन द माइंड एंड द बॉडी विल हैव एन इम्पैक्ट ऑफ इट। तो इसलिए कुछ बातें अपने आप को अब समझा दीजिएगा कि मेरा काम करने का और मेरा काम करवाने का तरीका थोड़ा सा बदला हुआ होगा। एनर्जी कंजर्व, सेव एनर्जी, माई एनर्जी एंड एवरीवन्स एनर्जी, संस्कारों को बदलना है। तो कुछ संस्कार देखते हैं, पेशेंस, धैर्यता का संस्कार, सम्मान से बात करने का संस्कार। वो कोई सिक्योरिटी गार्ड सेवा कर रहा है, कोई रिसेप्शन पे सेवा कर रहा है, कोई नर्स आपकी साथ सेवा कर रही है, कोई आपका असिस्टेंट जूनियर इंटर्न आपके साथ सेवा कर रहा है, कोई भी सेवा कर रहा है, रोल अलग अलग है, हम रोल के हिसाब से अब बात नहीं करेंगे, सबके साथ प्यार और सम्मान से बात करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई बहुत सीनियर है तो उसके साथ तो प्यार से रिस्पेक्ट से बात, एंड कोई अपने से जूनियर है तो उसके साथ कैसे भी बात। एनर्जी कंजर्व, हर एक का मन ध्यान रखते हुए सबके साथ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी से बात करेंगे, तो सारा दिन में फ्लक्चुएट नहीं होंगे, मन की स्थिति ऊपर नीचे नहीं जाएगी, स्थिर रहेगी और संयम में रहेगी। गुस्सा ये तो हमें अपने हॉस्पिटल से हटा देना होगा, अपने हॉस्पिटल को लिखिएगा नो एंगर जोन, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नो एंगर जोन। आज हम वायरस हमें ना हो दूसरे का, उसके लिए कितना ध्यान रखते हैं, इसी तरह वाइब्रेशंस दूसरों के हम पर हावी ना हो जाए, इसके लिए हमें हॉस्पिटल के वाइब्रेशन का, ऊर्जा का कितना ध्यान रखना चाहिए, इसलिए नो एंगर जोन ये हॉस्पिटल में लिख देते हैं हर जगह। इससे और एक सेफ्टी भी होगी, पेशेंट्स को भी गुस्सा करना नहीं अलाउड होगा, क्योंकि दे आर एंटरिंग अ नो एंगर जोन, तो आप प्यार से उनको उस तरफ इशारा कर देना बोर्ड के कि यहाँ पे गुस्सा करना अलाउड नहीं है, आपको जो बोलना है जरा आराम से बोलिए, क्योंकि आपके गुस्से का असर हॉस्पिटल पर, स्टाफ पर और जो यहाँ जिनका इलाज हो रहा है उन पर भी असर होता है। हमें हॉस्पिटल की, अपने क्लिनिक की, जहां भी हम बैठते हैं उस स्थान की ऊर्जा को बहुत ऊपर उठाना है। जैसे मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च, आश्रम, ऐसे स्थानों पर जब लोग जाते हैं तो उनको एंटर करते ही एक सुकून मिलता है। कई बार हम देखते हैं कि जब माउंट आबू जो हेडक्वार्टर्स है वहां पर लोग आते हैं, जब आए हैं तो छोटी बड़ी कोई बीमारी होती है, किसी को घुटने का दर्द है, किसी को पीठ में दर्द है, किसी को कभी सर दर्द है, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें तो होती है। और फिर आते हैं 3 दिन की रिट्रीट के लिए, कुछ को तो नींद अच्छी नहीं आ रही होती अपने घर पे, और जब वहां आते हैं आश्रम में तो अगले दिन कहते हैं, अरे यहाँ आकर तो मुझे मेरा सर दर्द चला गया, कल रात को तो मैंने बहुत अच्छी नींद आई मुझे। तो वो क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए क्योंकि स्थान की वाइब्रेशन आने वाले लोगों के मन की वाइब्रेशन को चेंज कर देती है। इम्पैक्ट ऑफ वाइब्रेशंस ऑन द अदर पीपल्स माइंड्स। तो सुख मिला और सुकून मिला ना दूसरे को, एक दिन के अंदर ही आते ही बेटर फील होना शुरू हो जाना। और ये हम सब ने अनुभव किया है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाओ, अंदर जाते ही लगता है सुकून मिल रहा है, शरीर अच्छा फील होने लग गया है। तो हॉस्पिटल, हमारा क्लिनिक, वो भी तो एक हीलिंग सेंटर है ना, तो उसके वाइब्रेशन भी ऐसे होने चाहिए जो अंदर आते ही लोगों को सुकून मिले। तो इसलिए उसको नो एंगर जोन बनाना तो बहुत 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 जरूरी है। इसलिए हर जगह सुंदर से बोर्ड बनाकर अपने हॉस्पिटल और क्लिनिक को नो एंगर जोन लिख दीजिए वहां पर। तो गुस्सा आउट, इम्पेशेंस, इरिटेशन, ये आउट, आर्ग्यूमेंट, उलझना किसी से आउट। और एक और चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है, लोगों के बारे में नेगेटिव सोचना या उनके लिए नेगेटिव बोलना, मतलब किसी और की कमजोरी, किसी और की कोई प्रॉब्लम, उसके बारे में डिस्कशन करना यहाँ पर या यहाँ पर, वो नहीं है और उनके बारे में बात करना। कोई प्रॉब्लम है, इशू है, तो हमें उनके साथ रिजॉल्व करना चाहिए या उनको साथ में बिठा कर किसी बड़ों के साथ रिजॉल्व करना चाहिए। लेकिन सिर्फ पीठ पीछे बातें करना ये सबसे बड़ा एनर्जी का डिप्लीटर होता है। स्पिरिचुअलिटी हमें बहुत अच्छी एक चीज सिखाती है, जिसका आप यहाँ चिंतन करोगे, विच मीन्स अगर हमने यहाँ पर किसी की कमजोरी का चिंतन किया तो अब वो कमजोरी सिर्फ उनकी नहीं, हमारे चित्त का हिस्सा बन जाती है। सो कीपिंग पीपल्स नेगेटिविटी एंड वीकनेस ऑन आवर माइंड, टॉकिंग अबाउट इट टू अदर पीपल, तो वो कमजोरी हमारे चित्त का भी हिस्सा बन जाती है। इसलिए बहुत बहुत ध्यान रखना है कि ऐसे ही खड़े खड़े इसके बारे में बात, उसके बारे में बात, सरकार के बारे में बात, हॉस्पिटल के हेड के बारे में बात, नहीं, नहीं करना। कुछ चीजें अगर हमारे कंट्रोल में है उसके लिए बात करना, उनसे जाकर बात करना, या जो पोजीशन में, अथॉरिटी में, उनसे बात करना। कुछ चीजों के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, अगर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे तो फिर कम से कम उसके बारे में सोचकर और बार बार बात करके हम अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को डिप्लीट क्यों कर रहे हैं, अपने हॉस्पिटल की एनर्जी को क्यों डिप्लीट कर रहे हैं। एक्सेप्ट कर लीजिए कि इस समय ये बात मेरे कंट्रोल में नहीं है, एटलीस्ट सब कुछ जो मेरे कंट्रोल में है मैं उस पे फोकस करके अपना बेस्ट करूं। क्योंकि कब ऐसी परिस्थितियां होती है ना, तो जो भी मिलते हैं एक दूसरे को, सेम बात सेम बात सेम बात, आपको पता है ऐसा हुआ, आपको पता है उसने ऐसा किया, देखो क्या कर रहे हैं। दिस इज ऑल गोइंग टू बी अ ह्यूज डिप्लीटर हियर। और जब से हमारे पास फोन पर ये सारी फैसिलिटीज आ गए तो फिर हम बातें सिर्फ एक दूसरे से नहीं करते, वो मैसेंजर्स, वो ग्रुप्स, वो सोशल मीडिया हैंडल्स, हर एक के बारे में ओपिनियन, हर एक के बारे में कमेंट, ये बहुत बड़ा एनर्जी डिप्लीटर है। सल्यूशन पर फोकस करें, यस, सल्यूशन के लिए जिनको बता सकते हैं, यस, अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन राय देने की भाषा भी सही होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ बार 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 हर एक से वो बात करना, ये तो बहुत बड़ा एनर्जी डिप्लीटर होता है। तो अपनी एनर्जी को कंजर्व करना है। सो एंगर, इम्पेशेंस, प्रेशर, हरिड होने का, जल्दी जल्दी दूसरों को करने का, दूसरों की नेगेटिव बातें करने का, या सिचुएशंस के बारे में शिकायत करने का। शिकायत मतलब जस्ट ग्रम्बल, कंप्लेन, जस्ट ग्रम्बलिंग, ऐसा है देखो ना, ऐसा है देखो ना, ये करने से हमारी एनर्जी वेस्ट होगी, वो चीज अभी ठीक नहीं होगी। वो चीज को ठीक करने के लिए भी हमें अच्छे वाइब्रेशंस देने पड़ते हैं, लेकिन बार बार सोचने और बोलने से हमारी एनर्जी वेस्ट होती है और हमारी इमोशनल फिटनेस डाउन। तो इनमें से एक एक संस्कार को चूज करते जाइए। सिर्फ अटेंशन रखिए कि इस समय ये अलाउड नहीं है, 6 महीने के बाद देखेंगे, अगर मन किया तो संस्कार को वापस इमर्ज कर लेंगे, वो यहाँ से कहीं जाने नहीं वाला, यही है, बस उसको मर्ज कर करके कर करके बिल्कुल पीछे दे देना है। लेकिन 6 महीने के बाद आपको रियलाइज होगा कि हम कितनी एनर्जी वेस्ट कर रहे थे इन बातों के अंदर, और आप बहुत सुंदर एक डिफरेंट लाइफस्टाइल, डिफरेंट जीवन जीने का तरीका अपने ओरिजिनल संस्कार के साथ जीना शुरू कर देंगे। तो इन संस्कारों के ऊपर हमें अब थोड़े दिन काम करना है, और उसके लिए हमें इस बैटरी को रोज सुबह चार्ज करना बहुत 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 जरूरी है। सुबह का आप 1 घंटा नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, सुबह का आधा घंटा एटलीस्ट अपने लिए रखना शुरू कीजिए। और जो लोग रोज हॉस्पिटल आजकल नहीं जा रहे, क्योंकि हर एक का शिफ्ट और ड्यूटी और अलग अलग हुआ हुआ है ना आजकल, तो सभी लोग तो रोज नहीं जा रहे, तो फिर वो तो रोज 1 घंटा जरूर अपने लिए रखें। सबसे पहले सुबह के दिन की शुरुआत परमात्मा का याद, मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। सुबह सुबह हम दुनिया से कनेक्शन जोड़ने से पहले परमात्मा से कनेक्शन जोड़े। अगर हम सुबह ही सबसे पहले उठते ही दुनिया से कनेक्शन जोड़ लेते हैं, मतलब टीवी पर क्या आ रहा है, न्यूज में क्या आ रहा है, न्यूज पेपर में क्या आया है, फोन पे किसके मैसेजेस आए हैं, हाँ हॉस्पिटल से कुछ अर्जेंट है वो एक अलग बात है, लेकिन बाकी सब मैसेजेस जो आते रहते हैं ये सब दुनिया की बातें हैं। सुबह सुबह अगर दुनिया की बातें हमने कंज्यूम की, तो फिर वहां यहाँ पर जो दुनिया की स्थिति वो हमारे मन की स्थिति, एंड एज अ हीलर हमारे मन की स्थिति इधर होनी चाहिए। तो सुबह का 1 घंटा दुनिया की बातें अपने मन पर न डाले, सुबह का 1 घंटा परमात्मा की स्थिति को अपने मन पर डालें, क्योंकि अपनी ऑरा को वाइट बनाना है ना, तो दाता की तरह बनना है, तो फिर दाता की स्थिति डालनी पड़ेगी। अगर दुनिया की स्थिति मन पर डाली तो दुनिया जैसी स्थिति बन जाएगी, अगर दाता की स्थिति मन पर डाली तो दाता जैसी स्थिति बन जाएगी। तो किसकी शक्ति पहले यहाँ डालनी है? तो सुबह का समय मेडिटेशन हमेशा जरूरी था, लेकिन अब तो कंपल्सरी होना चाहिए हमारे लिए, कि ये बैटरी को चार्ज करके ही हमें घर से निकलता है अपनी सेवा के लिए। तो सुबह का सबसे पहली चीज परमात्मा के साथ कनेक्शन, राजयोग मेडिटेशन, मतलब जो सर्वश्रेष्ठ है उसके साथ कनेक्शन जोड़ना, स्वयं पर राजा बनना, राजयोग स्वयं पर राजा बनना, कि मतलब मेरा मन, मेरे शब्द, मेरा व्यवहार, ये सब मेरे अनुसार चलते हैं, स्वयं पर राजा बनना, और संस्कार परिवर्तन। राजयोग मेडिटेशन का सबसे बड़ा जो लक्ष्य इम्पोर्टेंट है वो है संस्कार परिवर्तन, अपनी इमोशनल फिटनेस को हाई करना। तो अब इस सेशन के बाद आपको राजयोग मेडिटेशन कोर्स के बारे में भी बताया जाएगा। वैसे तो आप जहां जहां रहते हैं आपके नजदीक ब्रह्मा कुमारीज का राजयोग मेडिटेशन सेंटर है, और जब सेंटर पर सेवाएं शुरू हो जाएंगी तो आप जरूर जाइएगा, जरूर जाइएगा, अब तो बहुत जरूरी है जाना। और जाकर वहां बहनों से अपना टाइम फिक्स करके 1 घंटा हफ्ते के लिए, 5-6 days 1 hour, 1 hour नहीं हो तो 30 minutes, 5-6 दिन के लिए 30 minutes सही, आप सेंटर पे जाकर जो दिन जो टाइम आपको सूट करे ये मेडिटेशन जरूर सीखेगा। लेकिन क्योंकि अभी तो नहीं जा सकते, तो तब तक हम ये मेडिटेशन कोर्स ऑनलाइन शुरू करेंगे, और आप सबके लिए एक विशेष मेडिटेशन कोर्स ऑनलाइन रखा जाएगा, जिसकी डिटेल्स आपको इस सेशन के एंड में मिलेंगे। तो सुबह का समय वो मेडिटेशन सीखना, और फिर सुबह हर रोज वो मेडिटेशन करना, फिर कुछ क्षणों के लिए 15-20 मिनट, और अगर आपको लगे आपको सुबह टाइम नहीं मिल रहा है, आप बहुत जल्दी हॉस्पिटल जाते हैं, तो आप सुबह ट्रैवल टाइम में यूज कर लीजिए। लेकिन सुबह का समय स्पिरिचुअल स्टडी का होना चाहिए, मतलब अंदर जो खुराक जाएगी सुबह, जो हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, वो हमारी इमोशनल डाइट है, इसीलिए दुनिया की बातें सुननी पढ़नी देखनी नहीं सुबह सुबह, तो इमोशनल डाइट को वो सारी बातों से बचा लिया, लेकिन खुराक सुबह अच्छी देनी है। तो इसलिए स्पिरिचुअल स्टडी का समय सुबह का बहुत इम्पोर्टेंट है कि 15-20 मिनट आधा घंटा परमात्मा के महावाक्य, डिविनिटी, प्योरिटी, फेथ, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सारी बातें जब अंदर चली जाएंगी, परमात्मा की शक्तियां और परमात्मा का ज्ञान, ये दो चीजें जब आत्मा को मिलती हैं, तो आत्मा की एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, ये आत्मा की बैटरी चार्ज होने लग जाती है। तो सुबह का आधा एक घंटा अपने लिए जरूर रखना है, और बाकी आप फिजिकल फिटनेस के लिए तो करते ही है। फिर सारा दिन में भी अपना ध्यान रखना है कि जो बातें सुबह स्टडी की उसमें से कुछ एक दो पॉइंट्स अपने लिए रख लीजिए, और वो एक दो पॉइंट्स सारा दिन में हर एक घंटे के बाद रुक कर अपने आप को याद जरूर दिलानी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि वो सुबह की बात यहाँ हमारी सोच बार बार रिपीट होती जाए और हमारी ऑरा हमेशा साफ रहे, क्लीन रहे। कोई आए, कोई मिले, कुछ कहे, कुछ करे, वो एनर्जी हमारे में यहाँ पे ट्रैप नहीं होनी चाहिए। हम फटाफट से रुककर उसको साफ कर ले कि हाँ अच्छी बात यहाँ पर डाल दे, तो वो बात जो थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही थी वो साफ हो जाएगी। जैसे आप चाय पी रहे हैं और पीते पीते सोफे पे गिर जाए तो आप उसको छोड़ थोड़ी देते हैं, आप तुरंत उसी समय उसको साफ कर देते हैं। तो दाग को तुरंत मिटाना है। ऐसे ही ये सफेद ड्रेस है, अब इस पे अगर कुछ गिर जाए तो हम छोड़ थोड़ी देंगे, इमीडिएटली साफ करते हैं। और जितना वाइट रखना है उतना तो साफ इमीडिएटली करना पड़ता है। इसी तरह ऑरा को वाइट रखना है, तो कोई कुछ कह गया, कुछ हो गया, कुछ बात हो गई, कम से कम हर एक दो घंटे के बाद एक मिनट के लिए रुक के उसको साफ करना होता है यहाँ से सोच को, ताकि वो ऑरा सारा दिन वाइट रहे, वो हीलिंग एनर्जी सारा दिन हाई रहे। सो हर एक दो घंटे के बाद रुककर आधा मिनट, एक मिनट रेस्ट लेकर अपनी सोच को चेक करके, और वो जो सुबह सुना या पढ़ा था उसमें से कोई संकल्प क्रिएट करके सारा दिन अपनी स्थिति को स्टेबल और हाई वाइब्रेशन पे रहेंगे, तो हमेशा देते रहेंगे, सबको देते रहेंगे। फिर रात को सोने से पहले भी कम से कम 5-10 मिनट सोने से पहले फिर स्पिरिचुअल स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारा दिन में इतना कुछ हो जाता है, तो वो सारी बातें हमारे मन पर होती हैं। अगर हम उन बातों के साथ ही सो जाएंगे तो शरीर तो इतना थका हुआ होता है कि आपको बेड पे जाते ही नींद आ जाती होगी, लेकिन वो तो शरीर सोएगा, मन कैसे सोएगा, क्योंकि मन पे तो इतना कुछ चल रहा है। तो सोने से पहले कम से कम 10 मिनट कुछ बहुत अच्छा शक्तिशाली स्पिरिचुअल कंटेंट सुने, पढ़े या देखे, लेट इट गो इन, ताकि वो सारी बातें जो पहले की थी उसके ऊपर ये लास्ट लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाए, सारा दिन की कई बातों के आंसर्स मिल जाएंगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मन को सुकून मिलेगा, मन की स्पीड स्लो डाउन होगी, शांत होगा, और फिर आप जब सोएंगे तो सिर्फ शरीर नहीं सोएगा, साथ में मन भी सोएगा। द माइंड नीड्स डीप स्लीप फॉर अ गुड इम्यूनिटी सिस्टम, आप ही हम सबको सिखाते हैं, तो आपको अपनी स्लीप भी चेक करनी होगी कि सिर्फ शरीर सोता है या मन भी अच्छे तरह से सोता है। तो ये दो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है इमोशनल फिटनेस के लिए, सुबह का समय और रात को सोने से पहले का समय। एंड आई एम श्योर आजकल आप सारे वेजिटेरियन डाइट खा रहे हैं, आपके कहने अनुसार समाज ने भी सबने वेजिटेरियन ही खाना शुरू किया है। वेजिटेरियन डाइट हमारे मन की स्थिति के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और इट्स टाइम कि ये समय है कि आपको सबको भी ये बात बतानी होगी, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन से हमने सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर लिया कि वो हेल्थ है, वो तो सिर्फ प्रोटीन्स था ना, लेकिन उसकी वाइब्रेशन क्या थी, जैसा अन्न वैसा मन। एंड होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, ये हमें बार बार ये बताते हैं बात कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो वो अन्न और पानी के वाइब्रेशन कैसे होने चाहिए, तो एलोपैथी भी इसको अपने साथ ले ले कि खाना और पानी सिर्फ शरीर के लिए नहीं, ये मन के लिए भी है। तो उसके वाइब्रेशंस कैसे होने चाहिए, तो वो भोजन भी, वो खाना भी बहुत शांत स्थिति में, स्थिर स्थिति में, स्टेबिलिटी के साथ अगर वो खाना बनेगा, देन इट इज नॉट जस्ट हाई न्यूट्रिशनल डाइट, इट हैज टू बी अ हाई वाइब्रेशनल डाइट। सिर्फ हाई न्यूट्रिशन नहीं, हाई वाइब्रेशन एंड हाई न्यूट्रिशन। क्या हुआ पिछले कुछ सालों से, हम सिर्फ यही चेक कर रहे हैं, डाइटिशियन भी हमें सिर्फ इतना ही पूछती है, आप प्रोटीन्स कितने ले रहे हैं, आप कार्बोहाइड्रेट्स कितने ले रहे हैं, आपकी सुबह में कितने मिनरल, सिर्फ न्यूट्रिशन पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन शरीर को चाहिए लेकिन मन को वाइब्रेशन चाहिए, और मन की स्थिति का असर शरीर पर पड़ता है। तो बेस्ट ऑफ न्यूट्रिशन तो बॉडी को दे दिए, लेकिन अगर बेस्ट ऑफ वाइब्रेशन नहीं दिया तो फिर हीलिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए हाई वाइब्रेशनल न्यूट्रिशनल डाइट, इसको थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो जो नॉन वेजिटेरियन फूड है उसकी वाइब्रेशन में तो बहुत दर्द है, दुख है, गुस्सा है, डर है, इस समय तो हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए सभी को इस समय सात्विक भोजन, ये एक्सपेरिमेंट जरूर करना है, सात्विक खाना, वेजिटेरियन डाइट, एंड वो भी बहुत अच्छे मन की स्थिति में। आप सब जिनके क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जहां पर खाना बनता है, थोड़ा सा विशेष वहां ध्यान दें कि खाना बनाने वालों के मन की स्थिति ठीक हो, वो खाना किस तरह से बना रहे हैं, ऐसे नहीं चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, इधर से बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, शोर भी मच रहा है और खाना भी बन रहा है। आफ्टर ऑल वो खाना हीलिंग करने जा रहा है, वो सारे जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में, उनके लिए वो खाना बन रहा है, वो खाना तो बहुत सुकून में बनना होता है। और खाना खाने के समय आप सारा दिन में बहुत व्यस्त रहते हैं, कभी कभी तो बस चलते फिरते में ही खा लेते हैं, इसे इतना सा खाते हैं और भागते हैं, हमें लगता है नहीं ये तो बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे उधर जाना है। कभी कभी ऐसा हुआ तो इट्स ठीक है, लेकिन अगर ये हमने अपना लाइफस्टाइल ही बना लिया कि हमने आराम से बैठकर खाना नहीं खाया, तो ये ना हमारे लिए अच्छा होगा और ना ये हमारे हीलिंग एनर्जी के लिए अच्छा होगा, और इसीलिए ना ये पेशेंस के लिए अच्छा होगा। 5-7 मिनट से ज्यादा खाना खाने में नहीं लगेगा, लेकिन वो 7-8 मिनट जरा बैठकर, और हॉस्पिटल में अगर है तो अकेले बैठकर खाइए, क्योंकि कई बार जब आप सबके साथ बैठकर खाते हैं तो फिर वो ही वाली बातें कर रहे हैं, हॉस्पिटल की बातें, कोई पेशेंट के बारे में बातें, कोई केस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था उसके बारे में बातें, ये सारी बातें खाना खाने के समय नहीं करनी है। तो इसलिए हॉस्पिटल में सबसे मिलिए, सबके साथ बैठिए, लेकिन खाना खाने के समय नहीं, खाना आप अकेले बैठकर खाइए। और अगर आपको फिर भी सबके साथ खाना है तो फिर खाते समय ये ध्यान रखना होगा कि आप बातें कौन सी कर रहे हैं, किसी और के बारे में बात नहीं, किसी बीमारी के बारे में बात नहीं, किसी केस के बारे में बात नहीं, इनमें से कोई भी बातें नहीं कर सकते। खुशी खुशी वाली हैप्पी हैप्पी बातें अगर करनी है तो करिए, लेकिन वो क्या है ना, कभी कभी हमारी कॉन्वर्सेशन शुरू उससे होती है फिर थोड़ी देर में इधर ही चली जाती है कहीं। इसलिए 5-7 मिनट अपने आप के साथ बैठकर भोजन कीजिए, क्योंकि फूड अब्सॉर्ब्स वाइब्रेशंस एंड फूड इन्फ्लुएंसेस स्टेट ऑफ माइंड। और खाना खाने से पहले परमात्मा को याद करके और वो श्रेष्ठ संकल्प के वाइब्रेशंस उस भोजन में डालकर, इवन पानी पीने से पहले, आप सारा दिन मेजोरिटी पानी तो हॉस्पिटल में ही पी रहे होंगे, इवन अगर आप अपने घर से लेकर गए हैं, लेकिन वो पानी तो सारा दिन हॉस्पिटल के वाइब्रेशंस में ही है ना, तो उसमें वो दर्द और डर की वाइब्रेशंस आ जाती है। तो ऐसे ही नहीं पानी पी लेना चाहिए, 5 सेकंड, ज्यादा टाइम नहीं लगता, जैसे आप ऐसे करके हाथ सैनिटाइज करते हैं ना दिन में इतनी बार, कोई अगर गिने कि आप कितनी बार हाथ को सैनिटाइज करते हैं हॉस्पिटल में या हाथ धोते हैं, लेकिन आप कभी भूलते थोड़ी हैं। ऐसे ही हम लोग कभी भूलते नहीं हैं कि पानी पीने से पहले, खाना खाने से पहले 5 सेकंड रुककर परमात्मा को याद करके शक्तिशाली संकल्प उस खाने और पानी में देकर फिर ही स्वीकार करते हैं, उसके बिना कभी भी स्वीकार नहीं करते, ताकि हमारा मन सही स्थिति में रहे। इस समय कुछ संकल्प करना बहुत जरूरी है ताकि हमारी एनर्जी हाई रहे और हम अपने आप को बहुत सुरक्षित और सेफ फील करें, क्योंकि आप हाई रिस्क जोन में जा रहे हैं हर रोज, आपके आसपास बातें भी बहुत सारी चल रही हैं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी बहुत आती है। कुछ महीनों के लिए तो आप न्यूज चैनल्स देखना छोड़ ही दें, क्यों सुनना है। आपकी जिम्मेवारी सिर्फ जो आपके अंदर आ रहा है उसी के ऊपर है कि आपके एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपके हॉस्पिटल की, बस उसको हाई एनर्जी दें। बाकी पूरे देश में, दूसरे हॉस्पिटल में, दूसरे देशों में क्या हो रहा है, ये सब कुछ अब भरने का ना टाइम है और एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है। क्योंकि हर जगह का सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते यहाँ पर असर होता है, और जब यहाँ पर असर होता है तो जो अपनी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर असर हो जाएगा। सो वी ऑल नीड टू जस्ट फोकस ऑन आर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी डोंट नीड टू कंज्यूम व्हाट्स हैपनिंग इन अदर कंट्रीज एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट्स नॉट द टाइम राइट नाउ, क्योंकि इसको वाइब्रेशन को हाई रखना है। कुछ श्रेष्ठ संकल्प जिनको आप बार बार यूज कर सकते हैं, सुबह, रात को, एंड डेफिनेटली खाना खाने से पहले और पानी, चाय, कॉफी पीने से पहले। 10 संकल्प है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, आई एम अ पावरफुल बींग। मैं शांत आत्मा हूँ, आई एम अ पीसफुल बींग। मैं निर्भय आत्मा हूँ, आई एम अ फियरलेस बींग। 4th, मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है और हमेशा रहेगा। माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी एंड विल ऑलवेज बी। 5th, परमात्मा की शक्तियां और दुआओं का कवच मेरे चारों तरफ है। परमात्मा की शक्तियां और दुआओं का कवच मेरे चारों तरफ है, ये मेरा सुरक्षा कवच है। गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स, सर्कल ऑफ डिवाइन लाइट, व्हाइट लाइट अराउंड मी, आई एम प्रोटेक्टेड। परमात्मा की शक्तियों का कवच मेरे परिवार के चारों तरफ है। परमात्मा की शक्तियों का कवच मेरे हॉस्पिटल के चारों तरफ है। हर एक सुरक्षित है, हर एक सुरक्षित है। हर एक के लिए सुबह सुबह एक दुआ क्रिएट करना बहुत बहुत जरूरी है, नहीं तो ये थॉट बार बार माइंड में चल रहे हैं, कहीं कुछ हो जाए, इसको हो जाए, उस हॉस्पिटल में डॉक्टर को हो गया, उधर नर्स को हो गया। दिस इंफॉर्मेशन इज टू मच ऑन द माइंड। वी हैव टू कीप द माइंड वेरी काम एंड सो वी से माय हॉस्पिटल इज प्रोटेक्टेड बाय गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स, ईच वन इज सेफ। ये बार बार क्रिएट करना है। परमात्मा की शक्तियों का कवच हमारे देश और विश्व के चारों तरफ है। एंड लास्ट संकल्प, वो जो चीज इस सृष्टि पर आई थी वो चली गई है, फिनिश्ड। ये संकल्प बार बार करना है। क्यों हमने कहना है चली गई है, मतलब हम सोल्यूशन बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे, वो चीज किसी के जीवन में असर नहीं करेगी उसके बाद, क्योंकि हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। इसलिए ये नहीं सोचना बार बार, एक साल रहेगा, दो साल रहेगा, ये तो हमेशा रहेगा, इतने परसेंटेज लोगों को हो जाएगा। दैट इज नॉट फॉर ऑल ऑफ अस टू थिंक अबाउट। वो चीज जो आई थी वो खत्म, गॉन फॉर एवर, कोई असर नहीं कर रही अब ये किसी के भी जीवन के ऊपर। सो ये 10 संकल्प, पावरफुल बींग, पीसफुल बींग, फियरलेस बींग, परफेक्ट हेल्दी बॉडी, प्रोटेक्टेड बाई गॉड्स एनर्जी, फैमिली प्रोटेक्टेड, hospital protected, India, the country and the world protected, and that thing which had come on the planet is gone forever, never to come again. ये बार बार दोहराइए। सुबह ये 10 संकल्प करिए, उसको visualize कीजिए। रात को सोने से पहले ये 10 संकल्प कीजिए, उसको visualize कीजिए। खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले 5 सेकेंड रुकिए, इन संकल्पों को repeat कीजिए। क्योंकि जो संकल्प हम बार बार रिपीट करेंगे वो यहाँ की हमारी सोच बन जाएगी। इट विल बिकम आर नेचुरल वे ऑफ थिंकिंग। ये हाई वाइब्रेशनल थॉट्स हैं, ये हमारी दूसरी ऑर्डिनरी थॉट्स को रिप्लेस करते हैं। और जैसा संकल्प वैसी सिद्धि, संकल्प से सिद्धि होती है। तो संकल्प श्रेष्ठ करें और सिद्ध करते जाएं। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट नाउ, taking care of our minds, increasing our emotional fitness, creating a high vibrational energy field, and healing people who are working with us, and also all of them who are coming to our hospital. This is our responsibility right now. Ye Rajyog meditation course जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओम शांति।
ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज एवं मेडिकल विंग, राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन RERF आपके लिए लेकर आए हैं राजयोग मेडिटेशन कोर्स। आइए इस अंतर मन की यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। राजयोग मेडिटेशन कोर्स का आगामी सत्र सोमवार से गुरुवार, मंडे से थर्सडे शाम 7 बजे से 8 बजे तक मेडिकल विंग के फेसबुक पेज facebook.com/medicalwinghq/live व मेडिकल विंग के यूट्यूब चैनल youtube.com/bkmedicalwing/live। ध्यान रहे, इसका ऑनलाइन लाइव प्रसारण होगा। व्हाट्सएप 8619937031। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज एवं मेडिकल विंग, राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन RERF आपके लिए लेकर आए हैं राजयोग मेडिटेशन कोर्स। आइए इस अंतर मन की यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। राजयोग मेडिटेशन कोर्स का आगामी सत्र सोमवार से गुरुवार, मंडे से थर्सडे शाम 7 बजे से 8 बजे तक मेडिकल विंग के फेसबुक पेज facebook.com/medicalwinghq/live व मेडिकल विंग के यूट्यूब चैनल youtube.com/bkmedicalwing/live। ध्यान रहे, इसका ऑनलाइन लाइव प्रसारण होगा। व्हाट्सएप 8619937031।
Awakening to a new way of living.
नम्रता। एक नम्र व्यक्ति कभी ये नहीं सोचता कि उसका सर किसी के आगे झुक रहा है। नम्रता से सर ना ऊंचा होता है ना नीचा, केवल सरल और सीधा होता है।
परमात्मा कहते हैं, नीचे बच्चे दिल में होता नीच बचता रहे, वाह मेरा भाग्य। वाह की बजाय वाय और वाय हो जाता है हाय, तो वाय नहीं वाह। आज से मैं ध्यान रखूंगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वाह 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 मेरा भाग्य दिल से कहूंगी, वाय और हाय नहीं कहूंगी। आप भी वाह वाह कीजिए। वाह वाह करने से सब ठीक हो जाता है।